ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की
जय।
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज
की जय। बोलो परम पूज्यक्षा गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमो।
शिविर के आदि में मंगलाचरण करने के लिए सम्यक ज्ञान संस्कार जो पुस्तक है उसके अंदर दो पद्य लिखे गए हैं जो कन्नड़ भाषा में हैं। इन दोनों पद्यों को हर रोज, पुस्तक नहीं दिया है अभी, कल देंगे सबको।
पुस्तक आलेली नहीं है, आज सायंकाळ येऊन राहिलेली आहे, उद्या भेटून जाईल।
अभी पुस्तक आए नहीं है, आज के दिन आ जाएंगे। मंगलाचरण के दो पद्य हैं जो कन्नड़ भाषा में हैं, उनको रोज मंगलाचरण करने के पश्चात ही ये क्लास की कक्षा प्रारंभ होगी। अंत में एक मंगलाचरण जिनवानी का है, उसको भी लास्ट में पढ़ेंगे, संक्षिप्त में है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से आता है सबको, उसको पढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान संस्कार यह विषय वस्तुतः हम लोगों को आत्मकल्याण के लिए, जैन धर्म का परिशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। इसी उद्देश्य को लेकर के जैन धर्म संबंधी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, इस ज्ञान को जैन धर्म में, जैन कुल में जन्मे प्रत्येक जीवात्मा अच्छी तरह से प्राप्त कर लें, इस उद्देश्य से ये पुस्तक बनाई गई। संकलित पुस्तक आगम के आधार से बनाया हुआ है और इसके भीतर जो भी सब्जेक्ट हैं सब बेसिक हैं, प्रारंभिक हैं। जैन धर्म के, जैन धर्म की परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। पहली शताब्दी से लेकर अब तक बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन सभी ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ जो पहली शताब्दी के लिखे गए माने जाते हैं, वो हमारे लिए जैन धर्म को समझने के लिए और प्रामाणिक रूप से समझने के लिए बहुत अच्छे ग्रंथ माने जाते हैं। उन्हीं का आधार लेकर के ये सम्यक ज्ञान संस्कार नामक पुस्तक की रचना हुई है और इसके भीतर जो जैन धर्म के सिद्धांत के ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो आप लोगों को लगते हैं कि बहुत कठिन ग्रंथ हैं, हम पढ़ नहीं सकते, और पढ़ना कठिन होने के कारण से स्वाध्याय आप लोगों का छूट जाता है, जो अच्छे अच्छे विषय हैं, सिद्धांतिक विषय हैं, जिनको पढ़ने से हमारा ज्ञान ही विकसित नहीं होता बल्कि श्रद्धा आचरण भी प्रौढ़ होता है, विकसित होता है और अच्छी तरह से आत्मा का कल्याण होता है। आर्यखंड में जन्म लेने का यह समय सार्थक हो सकता है। भगवान महावीर अपने जीवन काल में तीर्थंकर बन करके जिए और युवावस्था में उन्होंने त्याग तपस्या का मार्ग अंगीकार किया। लगातार 12 साल की तपस्या से उन्होंने अपनी आत्मा की खोज की, आत्मा की अनुभूति की, और आत्मा ही परमात्मा बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्येक जीवात्मा जो संसार में सांसारिक जीवन जी रहा है, यह जीवन तो अनादिकाल से है। इस अनादिकालीन संसारमय जीवन से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि संसार है तो हमारे लिए जन्म मरण का चक्र भी है, सुख भी है तो दुख भी है। सुख दुखमय इस जीवन में हम जी रहे हैं तो ये सुख और दुख जीवन में आते क्यों, जन्म मरण होता क्यों है, संसारी प्राणी मरण के पश्चात जाता कहाँ है, जन्म लेने के पश्चात पुनः मरता है, मरने के पश्चात उसका विनाश होता है या जीवित रहता है कहीं न कहीं जा करके जन्म लेकर के, इत्यादि ये बातें सामान्य लोगों के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं। और इन बातों के प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए जब हम निकलते हैं तो भौतिक रूप से किसी से पूछ करके उत्तर ले लेते हैं तो हमारे लिए समीचीन उत्तर की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने जीवन काल में इन्हीं बातों को खोज की आविष्कार किया, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, जन्म क्या है और मरण क्या है, दुख क्या है और सुख क्या है, तत्व क्या है अतत्व क्या है, संसार क्या है मोक्ष क्या है, कर्म क्या है धर्म क्या है, इत्यादि इन्हीं सारी बातों को उन्होंने इतना डीप खोजा, इतना खोल अंदर जाकर के देखा, चिंतन मनन किया, उसके पश्चात सार निकला कि यह संसार केवल मोह की महिमा है। हम संसारी बन करके जन्म लेते हैं, बार बार जन्म मरण होता है, आगामी कर्मों का हम बंद कर लेते हैं, किसी न किसी गति में हमारा जन्म हो जाता है, तो आगामी गति में जन्म लेने के लिए जीव को कर्म बंद तो करना ही पड़ेगा। क्या कर्म बंद के बिना कोई जीव संसार में जन्म ले सकता है? नहीं ले सकता। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दो ही प्रकार के हैं ना। पुण्य कर्म हमारे लिए दुख देता है और नहीं सुख देता है, और पाप कर्म हमारे लिए दुख देता है। ये सुख दुख को कर्म के निमित्त से भोगना जीव के लिए कब से हो रहा है? अनादिकाल से। अनादिकाल यानी क्या? अनादि जिसका अंत नहीं और जिसका मध्य भी नहीं और जिसका शुरुआत भी नहीं, आदि से रहित, अंत से रहित और मध्य से रहित जो काल होता है उसका नाम अनंत काल कहते हैं या तो अनादि काल कहते हैं। जिसका आदि नहीं होता है उसका नाम है अनादि, और जिसका अंत नहीं आता है उसको कहते हैं अनंत। अंतः यश न विद्यते स अनंतः, आदिर यश न विद्यते स अनादि। अनादि शब्द और अनंत शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। जिस काल की शुरुआत नहीं उस काल को हम क्या कहेंगे? आदि नहीं, तो उसको अनादि कहेंगे। और जिस काल का अंत नहीं उसको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। इस प्रकार आदि अंत से रहित काल को अनंत काल और अनादि काल, ये दो नाम आते हैं। कोई कोई बात ऐसी होती है, कोई अनादि से होती है लेकिन अनंत काल तक रहती नहीं है। जैसे जीव के पीछे संसार कब से है? अनादि से। अच्छा, इस संसार का अंत है क्या? अंत तो है, भविष्य में अंत है या पीछे अंत है संसार का? पीछे तो अनादि से है, और आने वाला काल भविष्य काल, भविष्य काल में इस संसार का कहीं ना कहीं अंत हो सकता है। अंत होने के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा या क्या अपने आप हो जाएगा? करना पड़ेगा, ये तो मालूम है ना, नहीं तो काल आएगा हो जाएगा, काल आ जाएगा हो जाएगा, ऐसा कहते हुए बैठना है क्या? नहीं, संसार का अंत अपने आप नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा आप अपने विचारों से क्या समझते हैं? संसार का अंत करने के लिए क्या करें? समीचीन ज्ञान प्राप्त करें। समीचीन ज्ञान किस वजह से प्राप्त करें? नहीं, स्वाध्याय तो समीचीन ज्ञान है। स्वाध्याय क्यों करे, समीचीन ज्ञान प्राप्त क्यों करे, इससे क्या सिद्ध होता है? सम्यक ज्ञान तो मिलता ही है। सम्यक ज्ञान मिलने के बाद क्या सिद्ध होता है अपने जीवन में, क्या होता है ज्ञान आने के बाद हमारे जीवन में क्या होता और क्या नहीं होता? हाँ, अज्ञानता मिट जाती है। अज्ञान दूर हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। सम्यक ज्ञान संस्कार क्यों लेना, ये पुस्तक क्यों पढ़ना, इतना परिश्रम क्यों करना, किसके निवारण के लिए? अज्ञान के निवारण के लिए। और ज्ञान जो है वो अनादिकाल से हमारे पास नहीं रहा है। अनादिकाल से हमारे पास ज्ञान था क्या अज्ञान था? अज्ञान था। और इस अज्ञान को हम मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते हैं। क्या करके मिटा सकते हैं? स्वाध्याय करके। स्वाध्याय करने से समीचीन ज्ञान होगा और उस समीचीन ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञानावरणी कर्म को मिटा करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति हमारे पास है। तो अपन को ज्ञान प्राप्त करना है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। सच्चा ज्ञान जिनवाणी से प्राप्त होता है और गुरुओं के मुखारविंद से सुनने से हमारा अज्ञान अंधकार मिट करके हमारे पास ज्ञान सूर्योदय होता है। ज्ञान का सूर्योदय होने के पश्चात ही हमको संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करने से क्या फल मिलता है और क्या नहीं करने से उसका क्या रिजल्ट निकलता है, यह ज्ञान हमारे लिए अच्छी तरह से जिनवाणी के माध्यम से होता है। यहाँ जिनवाणी है, इस जिनवाणी को अच्छी तरह से हमें स्वाध्याय करना है। जिनवाणी के स्वाध्याय से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान ही कल्याण का मूल होता है, ज्ञान ही सुख का मूल होता है, ज्ञान ही हमारे जीवन में दुखों से बचाता है, ज्ञान ही हमको जन्म मरण के चक्र से बचाने वाला साधन है, ज्ञान ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एकमात्र राह दिखा सकता है। अज्ञानी जीव संसार से मुक्त नहीं होते, मोह से मुक्त नहीं हो सकते, दुख से मुक्त नहीं हो सकते। वे सांसारिक जीवन भी जीते हैं तो वो अच्छी तरह से जी नहीं सकते। सांसारिक सुखों को भी अच्छी तरह से जीना अज्ञान के माध्यम से संभव नहीं। ज्ञानी ही सांसारिक जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। तो इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, बहुत उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं। पढ़ते समय अपने को आलसी बन करके नहीं पढ़ना, पहला। पढ़ाई में कभी आलसी नहीं होना, स्वाध्याय में आलसी नहीं होना, जिनवाणी के आराधना में आलसी नहीं होना। खाने पीने में आलसी हो जाए तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन उससे कोई आलसी नहीं होता। सांसारिक कार्य करने के लिए बहुत आलस्य छोड़ करके करते हैं, लेकिन आत्मा का कार्य, ज्ञान का कार्य, कल्याण का कार्य, सुख के मार्ग को प्राप्त करके उस पर चलने का कार्य, हम बहुत आलसी बन करके ये सब करते हैं। आलसी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हमको अभी आत्मा क्या है, संसार क्या है, आत्मा भगवान बन सकता है या नहीं बन सकता, इत्यादि ये बातें हमको अच्छी तरह से मालूम नहीं है। और मालूम नहीं है इसलिए उसके प्रति जो पुरुषार्थ होना चाहिए उत्साह पूर्वक, वो उत्साह कम पड़ जाता है। आत्मा को समझने के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए उत्साह चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। उत्साह यदि होता है तो नींद भी नहीं आती। ऐसी बात है। उत्साह न हो तो ध्येय नहीं बनेगा। पहला ध्येय बनाना पड़ता है, हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लक्ष्य बनाना पड़ता है, ध्येय बनाना पड़ता है। लक्ष्य के उपरांत फिर उत्साह जगाना पड़ता है। लक्ष्य के प्रति जितना उत्साहित होकर के हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा स्पीड से कल्याण होता है, स्पीड मिलती है। तो रोज उत्साहित होकर के ही काम करना पड़ेगा। आज तो प्रारंभिक भूमिका बनाएंगे, कल पाठ शुरू होंगे। भूमिका में ध्यान रखना है, कितने लोग हो गए, 90 हैं ये, यहाँ पर 100 क्या लगभग बैठे हैं क्या, दो तीन कम है। हाँ ठीक, लगभग 100 बैठे हैं। पुस्तक कितने गए, उस पर से पता चलेगा। मतलब यहाँ 7 कम है, 92 लोग होंगे। नए नाम
आए हैं।
अच्छा ठीक, इस पुस्तक के भीतर क्या विषय है एक नज़र से देखेंगे। देखने के लिए तो पुस्तक है ही नहीं, हम देख रहे हैं नज़र से। इस पुस्तक में टोटल 17 पाठ हैं, 17, और शेष सभी चार्ट हैं और नक्शाएं हैं, चित्र हैं, जो जैन भूगोल संबंधी विषय होता है उस संबंधी चित्र हैं, नक्शाएं हैं। जम्बूद्वीप का, ढाई द्वीप का, विदेह क्षेत्र का, सुमेरु पर्वत का, भरत क्षेत्र का, नंदीश्वर द्वीप का, इन सभी पुस्तकों में चित्र भी दिया है, उसको अच्छी तरह से अपन समझेंगे। टोटल जो इस पुस्तक के भीतर 17 पाठ हैं, ये 17 पाठ, पहला वाला धर्म का है। सबसे पहले अपने को धर्म का स्वरूप समझना है, धर्म किसे कहते हैं और धर्म हमारे जीवन में आता है तो कौन सा बड़ा उपकार करता है। धर्म के आने के उपरांत हमारे जीवन जैन जीने की शैली में क्या परिवर्तन आता है, इत्यादि ये बातें इसके भीतर हैं। दूसरा पाठ है परमेष्टि। परमेष्टि कितने होते हैं, 5 होते हैं, यहीं से पाठ प्रारंभ होता है। 5 परमेष्टि, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, इनका स्वरूप, इनका लक्षण और इनका उच्चारण इत्यादि हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और सीखना है। पंच परमेष्टि पाठ में नमोकार मंत्र के 5 जो पद हैं, इन पदों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उन पदों में रहने वाले पंच परमेष्टियों के कितने मूल गुण होते हैं, ये बात उसमें आएगी। तीसरा पाठ है मंगल। मंगल, मंगल कितने होते हैं, 4 मंगल होते हैं, अरहंत मंगल हैं, सिद्ध परमेष्टि मंगल हैं, साधु परमेष्टि मंगल हैं और अरिहंत भगवान केवली भगवान कहलाते हैं। केवली भगवान प्रणीत धर्म मंगल की कोटि में आता है। संसारी जीवों को आत्म कल्याण के लिए उन्होंने रत्नत्रय स्वरूप धर्म का उपदेश दिया है और उस धर्म को उन्होंने कहा कि यही अहिंसा है। अहिंसा क्या है? तो रत्नत्रय ही अहिंसा है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से जीव को अहिंसा धर्म की उपलब्धि होती है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने से जीव हिंसा से मुक्त होकर अहिंसक बनता है। सम्यक चारित्र को प्राप्त करने से भी जीव हिंसा से छूटकर अहिंसा मार्ग पर आ जाता है। इसलिए रत्नत्रय ही अहिंसा है। ऐसा कभी सुना था रत्नत्रय अहिंसा है? ये जरूर सुना था कि रत्नत्रय धर्म है, मार्ग है, पर अहिंसा है ये कभी सुना था? नहीं। क्यों नहीं सुना था? सुना नहीं होगा। चिंतन किया था? चिंतन भी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? हमको फुर्सत ही नहीं मिला था ये सब करने के लिए। खाना पीना सोने के अलावा हमको कब फुर्सत मिलता है? धर्म अहिंसा रूप है। यदि धर्म को अहिंसा कहेंगे तो अधर्म को क्या कहेंगे? इसका अपोजिट करो, हिंसा। धर्म यदि अहिंसा रूप है तो अधर्म हिंसा रूप है। अधर्म हिंसा रूप है। धर्म का विरुद्ध शब्द कौन सा? अधर्म। अधर्म का विरुद्ध शब्द कौन सा? धर्म। तो इसका अर्थ है कि धर्म को यदि हम अहिंसा कहते हैं तो अधर्म को नियम से हिंसा कहना ही चाहिए। इसके भी तीन रूप हैं और इसके भी तीन रूप हैं। धर्म के तीन रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रूप हैं। धर्म के तीन रूप हैं, अधर्म के भी तीन रूप हैं। क्या कहेंगे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन अधर्म है, उस अधर्म को छोड़ना है। देखो ये सभी बातें, ये धर्म है, ये अधर्म है, किसने समझाया? केवली पन्नतो धमो मंगलम। केवली प्रणीत जो धर्म मंगल है, केवली भगवान ने ही इसको समझाया है। इसलिए इन बातों पर हमें विश्वास करना क्या नहीं करना, इसको छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, अधर्म को त्यागना क्या नहीं त्यागना, ऐसा संशय नहीं करना। क्या संशय करोगे? क्या पता भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन क्या पता ऐसा है या नहीं, ऐसा संशय करोगे? नहीं, संशय नहीं करना। भगवान पर विश्वास है कि नहीं आपको? है। भगवान जो कहेंगे वो सभी करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे। भगवान के वचनों के प्रति, उनके वाणी के प्रति, भगवान के प्रति, फिर भगवान के अनुसार चलने वाले, संसार मार्ग को त्याग कर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरु, गुरु भी मंगल हैं। गुरु के वचनों को आप सुनते भी हैं, गुरु के वचनों को सुनते समय वे गुरु के ही होते हैं ऐसा समझते हैं कि भगवान के होते हैं ऐसा समझते? भगवान के होते हैं। गुरु जो बोलते हैं, भगवान ने जो जो बोला है वही गुरु बोलते हैं। इसलिए गुरु भी कहते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ही बोल रहा है। भगवान अंदर है और भगवान की वाणी अंदर है। भगवान ने जो जो समझाया है वही गुरु समझाते हैं। इसलिए गुरु की वाणी पर विश्वास करोगे तो भगवान की वाणी पर ही विश्वास होगा, क्योंकि गुरु की वाणी में और भगवान की वाणी में कुछ भी फर्क नहीं है। जल चाहे किसी के घर में हो, जल तो जल ही है, कुएं का जल या नदी का जल, जिस नदी से आपने जल भर लिया वहां से हजारों लोग उसी जल को भर करके घर में लाते हैं। वो किसी वैश्य के घर में गया तो वैश्य का जल कहलाएगा क्या? नहीं, नदी का जल ही कहलाएगा। किसी क्षत्रिय के यहाँ चला गया जल तो वो क्षत्रिय जल कहलाएगा क्या? नहीं, वो तो नदी का ही जल है। एक नदी का जल हजारों लोगों के पास पहुँचता है और वह हजारों लोगों की प्यास को बुझाता है। जल ही प्यास को बुझाता है ना, जल ही प्यास को बुझाता है। परंतु जल का विरोधी एक पेय पदार्थ और है जिसको लोग बहुत टेंशन में आकर के पी लेते हैं और सो जाते हैं, तो सोने के बाद उठते ही नहीं। वो क्या है? उठते ही नहीं, कभी जिंदगी भर नहीं उठते। पॉइजन, विष। जल प्यास को बुझाता है और विष हमारी इच्छा की पूर्ति करता है, इच्छा की प्यास को बुझा देता है, लेकिन बुझाने के बाद हमको उठने नहीं देता। विष पीने से हम मरते हैं। विष भी एक पदार्थ ही है, वो भी पुद्गल पदार्थ, और जल भी एक पदार्थ है, वो भी पुद्गल पदार्थ। पीने योग्य क्या है और त्यागने योग्य क्या है, ये तो समझ में आता है। हम कभी विष पीने का प्रयास नहीं करते, यदि करेंगे तो उस समय करेंगे जब हमारा टेंशन बढ़ जाए, अति लोड हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो हम विष पी करके मरे क्या, ऐसा विचार कर सकते हैं। लेकिन विष पीने से क्या परिणाम निकलता है, ये रिजल्ट हमारे पास है, सबके पास है। कभी पिया नहीं लेकिन समझते हैं कि विष पीने से व्यक्ति मरता है, विश्वास करेंगे ना? विष पीने से व्यक्ति मरता है, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्या पी करके ही देखना पड़ेगा? विश्वास नहीं हमें। तो जिस प्रकार से देखो, उदाहरण बहुत अच्छा है ये, जिस प्रकार से विष पीने से मरते हैं ये हमको मालूम है, इसलिए नहीं पीते, कभी नहीं पीते और विष से बचते हैं। अगर गलती से भी विष हमारे हाथ में है और किसी दूसरे ने बताया, तुरंत फेंक देते हैं कि नहीं? उसको तुरंत विसर्जन कर देते हैं, कहीं गलती से पी न जाए। विष कभी पिया नहीं लेकिन विष पर कितना विश्वास है, देखो हमारे जीवन को मारता है और ये पेट में जाएगा तो हम बच नहीं सकते, ये हानिकारक है, जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्त न हो जाए, अपने जीवन को बचाने के लिए हम विष के ऊपर भी विश्वास करते हैं कि वो मारता है, ये विश्वास है, और पानी हमको जिलाता है, ये विश्वास है। दूध है, पानी है, ये पेय पदार्थ हमारे लिए जीवनदायी वस्तु हैं, जीवन प्रदाता हैं, इसलिए इनको तो हम उपयोग करते हैं, इसमें भी विश्वास है और उसमें भी विश्वास है, लेकिन विश्वास में फर्क है। इसके ऊपर भी हम विश्वास करते हैं लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, ऐसा विश्वास है। इस पर भी हम विश्वास करते हैं लेकिन ऐसा विश्वास करते हैं ये पीने योग्य है, ऐसा विश्वास है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में भी हमें फर्क करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। इन तीनों के संबंध में किसने समझाया है सबसे पहले? किसने समझाया? केवली पन्नतो, केवली प्रणीत है ये। केवली भगवान ने समझाया है तो केवली भगवान के ऊपर विश्वास है क्या? नहीं है। जो जो कहेंगे सब पर है ना, फिर बाद में नहीं मत कहना। जो जो केवली भगवान ने कहा है वो सब पर हमें विश्वास करना ही है, करते हैं, तो वो जो कहते हैं उसको हमें शक्ति के अनुसार करना है। शक्ति है और हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए अपने जीवन का सदुपयोग नहीं होता। जीवन मिला है इसको सदुपयोग करने के लिए, सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो जीवन के सदुपयोग के लिए हमें विश्वास करने की तरीका ये है कि भगवान ने जो कुछ समझाया है उस पर ठोस हम विश्वास करेंगे और शक्ति के अनुसार उसका पालन भी करेंगे। ऐसा दो चीज़ें हैं, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। तो रत्नत्रय के विरुद्ध जो तीन वस्तु हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये कौन सा मार्ग है? मिथ्या मार्ग नहीं, किसका मार्ग है ये? ये मोक्ष का मार्ग है तो ये किसका मार्ग है? संसार का मार्ग है। मोक्ष से विरुद्ध संसार है और संसार से विरुद्ध मोक्ष है। क्या आप सभी लोग ये चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिले? केवल हाँ या वास्तव में चाहते हैं? यदि मोक्ष मिले यह बात वास्तव में आप चाहते हैं तो आपको इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान टाइम हो गया क्या? समय हो गया। ज्ञान आपको रुचिकर ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ज्ञान यदि अच्छा लगा तो जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। ज्ञान के बिना हम अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर लगा नहीं सकेंगे। इतनी सारी बातें हैं हम समझेंगे, पाठ बहुत सारे, टाइम हो गया है। धर्म, परमेष्टि, मंगल, अभिवादन, अभिवादन शब्दों का अर्थ, श्रावक, छठा पाठ है श्रावक, मरण, मरण पाठ भी है, एक पाठ संहनन वाला है, एक पाठ मुनि संबंधी है, परिग्रह संबंधी है, पात्र संबंधी है, और दान फल संबंधी भी एक पाठ है। प्रतिमा, 11 प्रतिमाएं होती हैं जैन धर्म में, उस संबंधी भी एक पाठ है। मोहिनी कर्म का पाठ है, कर्मबंध प्रत्यय का पाठ है, और नवदा भक्ति तथा दान के, दाता के दान के गुण, इतने ये 17 पाठ हैं जो बेसिक हैं। इन बेसिक पाठों के उपरांत हम इनको पढ़ने के उपरांत बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। लगभग इसको अच्छी तरह से पढ़ें तो बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग 6 डाला पढ़ना चाहते थे तो 6 डाला डायरेक्ट समझ में आने वाला नहीं, वो भी कठिन पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान संस्कार ये मूल है, ये सबसे बेसिक है। इस बेसिक के बाद फिर आप तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं, 6 डाला पढ़ सकते हैं, आगे के ग्रंथों को पढ़ना सुलभ हो सकता है। जिनवानी करेंगे, टाइम बहुत हो गया।
हाय सूचना है, आज दोपहर ठीक 2:15 से उपस्थित रहा।